பிரணமோ அரிஹந்தாணம், பிரணமோ சித்தாணம், பிரணமோ ஆயிரியாணம், பிரணமோ உவஜாயாணம், பிரணமோ லோயே பவசாமுனம். ஜன ஸ்வானுபூதி சேகிரி மம ஸ்வானுபூதி மதிகிரி ஆனந்த அம்ருத சேவரி சமதா பிரவாஹ பாவதி ராகாதி விக்லப் தோழிகே மா சரஸ்வதி பிரதிபாவ வந்தன திருஷ்டி நிஜமே ஜோரிகே திருஷ்டி நிஜமே ஜோரிகே.
यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कर्म प्रकृतियों के संदर्भ में, पुण्य प्रकृतियाँ, पाप प्रकृतियाँ, उनमें होने वाला उत्कर्षण, उनमें होने वाला संक्रमण, पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार की प्रकृतियाँ आखिर है तो बंधन ही, फिर भी पता नहीं क्यों पुण्य प्रकृतियों के प्रति हमारे हृदय में विशेष आकर्षण दिखाई देता है. उसका कारण भी पुण्य के प्रति आकर्षण नहीं है, उसका कारण पुण्य से मिलने वाली भोग सामग्री के प्रति आकर्षण है. सच में व्यक्ति पुण्य को नहीं, पुण्य से मिलने वाले भोगों को चाहता है. दुनिया में जो लोग पुण्य को चाहते हैं, आप उनसे पूछें, जरा बात करें, आप पुण्य को क्यों चाहते हैं? पुण्य में ऐसा क्या है? पुण्य तो धूल है ना, पुण्य तो मिट्टी है ना. पुण्य क्या चीज है? कर्म क्या है बताओ? कर्म जस्ट लाइक डस्ट. डस्ट ही तो है कर्म, धूल है ना. अब वो धूल किसको पसंद होगी कि नहीं नहीं वो धूल इतनी कीमती है कि उस धूल से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए धूल को भी संभालता है. ये जितने सर्राफे का काम करने वाले होते हैं, गोल्ड और सिल्वर का काम करने वाले होते हैं, सुनार, वो झाड़ू भी लगाते हैं ना
जी.
क्या तो वो कचरा फेंकते नहीं? वो डस्ट भी कीमती है उनकी. तो इसे ऐसे लगता है कि ये पुण्य की डस्ट बहुत कीमती है, क्योंकि पुण्य की डस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है. और यदि मैं ये कहूँ तो जगत के जीवों को तो जगत में सब कुछ पुण्य की डस्ट से मिलता हुआ दिखता है, पुण्य की धूल से. इसलिए उन्हें लगता है पुण्य अच्छी चीज है, पुण्य हम चाहते हैं. अभी यदि मैं आपके सामने पुण्य और पाप इन दोनों में कंपैरिजन करके बताऊं, तो मैं आपके मुख से ये निकलवा सकता हूँ मुकुंद भाई कि पुण्य बहुत अच्छा है, पुण्य ही चाहिए. बोलो, हम अध्यात्म की रुचि वाले, हम त्रिकाली ध्रुव गायक के प्रति जिनके हृदय में रस है, पुण्य को जीवन हो गया हमें हे कहते हुए और हे ये सुनते हुए. पुण्य हे ही है, पुण्य हे ही है, पुण्य भला नहीं है, पुण्य अच्छा नहीं है. पूरी जिंदगी हमारी ऐसी निकली है, पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से हम निरंतर पुण्य को हे कहते और हे समझते आ रहे हैं. उसके बावजूद भी जब मैं अभी आपको पुण्य और पाप में अंतर बताऊं, तो आपको हृदय से ऐसा लगता है यह पाप तो नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य आखिर थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, पुण्य तो अच्छी चीज है. पाप तो अच्छा नहीं है, लेकिन पुण्य तो अच्छा है, पुण्य तो भला है. पता है क्या क्या काम होते हैं पुण्य से, और क्या क्या काम अटकते हैं पुण्य के बिना? आप सोचते हैं, आपने सोचा है कभी? आपने एकदम एक वाक्य कह दिया कि हमें पुण्य नहीं चाहिए, लेकिन सुनो, पुण्य होता है तो घर में शांति रहती है. बोलो, चाहिए कि नहीं? पुण्य होता है तो घर में शांति रहती है, पुण्य होता है तो तबीयत ठीक रहती है. पुण्य चाहिए या नहीं आपको? पुण्य होता है तो कमर में दर्द नहीं होगा, पुण्य होगा तो नहीं होगा? बोलो, चाहिए? घुटनों का दर्द नहीं होता, पुण्य होता तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती. पुण्य होता है तो धन मिलता है, पुण्य होता है तो पैसा मिलता है, पुण्य होता है तो संपत्ति मिलती है, पुण्य होता है तो वैभव मिलता है, पुण्य होता है तो अच्छे लोगों का संपर्क मिलता है, पुण्य होता है तो जिन मंदिर मिलता है, पुण्य होता है तो जिनवाणी सुनने का अवसर मिलता है। क्या क्या नहीं होता पुण्य से ये तो बताओ। दुनिया के सब काम पुण्य के वजह से होते हुए दिखाई देते हैं, चाहिए कि नहीं? पुण्य पाप के उदय से सब काम बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, पुण्य के उदय से सब काम बनते हुए दिखाई देते हैं। आपको काम बनाने हैं कि काम बिगाड़ने हैं? हर व्यक्ति ये चाहता है अपने काम बनने चाहिए, अपने काम बनने चाहिए। अरे साहब, पुण्य का उदय होगा तो प्रशंसा होगी और पाप कर्म का उदय होगा तो निंदा हो जाएगी। अच्छा काम करने के बावजूद भी काम यदि आपका अच्छा है तो उस अच्छे काम होने के बावजूद भी चालू तो है ना, आपकी निंदा हो जाए। क्या कह रहा हूँ मैं, काम बहुत अच्छा करे महेंद्र भाई वो निंदा हो जाए, बुराई हो रही हो। और काम यदि बहुत खराब करे और फिर भी प्रशंसा मिल जाए, ये दुनिया में होता है ऐसा? ये क्या चक्कर है भाई? तो चक्कर तो एक ही है, पुण्य का उदय होगा तो प्रशंसा होगी और पाप का उदय होगा तो निंदा होगी। आपको निंदा चाहिए कि प्रशंसा चाहिए? हर व्यक्ति को प्रशंसा चाहिए, मेरी प्रशंसा हो, यश यश चाहिए सबको, यश चाहिए। हमारा ये कहना है जब पुण्य और पाप दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो आप तुरंत पुण्य को लेना चाहते हैं, पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको लगता है पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक मिलता है, बोलो पुण्य चाहिए या पाप चाहिए? बैलेंस में क्या चाहिए आपको? पुण्य ही चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जाना है, नरक कौन जाना चाहता है? आज तक कभी आपने किसी के बारे में नहीं सुना कि ये नरकवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, ये तो सबके बारे में सुनते हैं हम, लेकिन नरकवासी हो गए ये तो किसी के बारे में नहीं सुनते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नरक में जाकर के कोई वास नहीं करना चाहता। पाप कर्म के उदय में बनता हुआ काम बिगड़ जाता है और पुण्य के उदय में बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है। क्या चाहिए आपको? हाँ, पुण्य चाहिए हमारे को। आपसे महेंद्र भाई, आपको लगता है पुण्य चाहिए हमारे को? घर में शांति है, परिवार में शांति है, शरीर ठीक है, बिजनेस चल रहा है, नौकर चाकर हैं सब अपनी आज्ञा में चल रहे हैं, यश प्रतिष्ठा मिल रही है, धन वैभव संपत्ति सब कुछ मिल रहा है पुण्य से। अब बोलो अब क्या करेंगे? पुण्य क्यों नहीं चाहेंगे? मिले तो अच्छी बात है ना। लेकिन सुनो, एक बात हम कहते हैं आपको कि ये जो पुण्य है, ये पुण्य आपको लौकिक सब अनुकूलताएं दिला सकता है, पुण्य से सम्यक दर्शन नहीं मिलता, पुण्य से आत्मा नहीं मिलता, पुण्य से अतिंद्रिय आनंद नहीं मिलता। लोग पूछते हैं कई बार ऐसा, पंडित जी हमारे कब पुण्य का उदय आएगा कि हमें भी आत्मा का दर्शन होगा, हमारे कब पुण्य का उदय आएगा कि हमें सम्यक दर्शन होगा, हमारे कब पुण्य का उदय आएगा कि मोक्ष मार्ग शुरू होगा? हमने कहा भैया, पुण्य के उदय से मोक्ष मार्ग नहीं होता, पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग होता है। पुण्य नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। किताब ये सारी चीजें मिल रही थी पुण्य के उदय से, ये सारी चीजें संसार में मिल रही थी, पहले नक्की कर तुझे संसार में रहना है कि नहीं। संसार में रहना हो तो पुण्य काम आएगा, और संसार में नहीं रहना हो तो पुण्य क्या काम आएगा? अभी तो हमें पुण्य का भी ठिकाना नहीं है, चाहते तो है पुण्य और करते हैं पाप, पुण्य कैसे बनता है अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम। हम तो निरंतर पुण्य को घटा रहे हैं, अपने पुण्य को घटा रहे हैं, लोगों की निंदा और आलोचना करके पुण्य को घटा रहे हैं, यश की चाह में अपयश बन रहा है। मुझे यश मिले, मुझे इनसे यश मिले, मुझे ये सम्मान देवे, ये जो चाह है, इस चाह से क्या हो रहा है? अपयश बन रहा है पुण्य की चाह से, पता है आपको? तो क्यों चाह रहे हो आप पुण्य को? तो कहा पंडित जी क्या करें, पाप को चाहना शुरू कर दें? क्योंकि पाप को चाहने से यश बंधेगा। बोले कर्म तुम्हारी मायाचारी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इस मायाचारी से दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, कर्मों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये मायाचारी यहाँ नहीं चलती है, समझ रहे हो आप? इस मायाचारी का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कर्म भी उतने ही प्रकार के कुटिल रूप से, जटिल रूप से बनते हैं। जिनवाणी की आराधना ही एकमात्र उपाय है उत्कृष्ट पुण्य बंधन का। कर्म अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए जन्मवाणी की आराधना एकमात्र उपाय है, और यदि पुण्य नहीं चाहिए हो तो आत्म आराधना। घर गृहस्थी और विषय कषायों की चिंता से पाप बंधता है, नव देवता पंच परमेश्वरियों की आराधना से पुण्य बंधता है, और ज्ञायक देव की आराधना से धर्म होता है। क्या तुम्हें क्या करना है? ज्ञायक देव की आराधना करनी है, धर्म करना है तो ज्ञायक की आराधना करो। धर्म में परतंत्रता नहीं होती, धर्म स्वाधीनता का मार्ग है। धर्म में स्वतंत्रता है, धर्म में स्वाधीनता है। परतंत्रता जहाँ रंच मात्र भी नहीं हो उसका नाम धर्म है। रंच मात्र भी पराधीनता नहीं, रंच मात्र भी परतंत्रता नहीं, जहाँ थोड़ी भी परतंत्रता है कि पंडित जी आएंगे और सुनाएंगे तब धर्म होगा, बोले ये धर्म नहीं है, भ्रम है। पंडित जी आएंगे, 5-7 दिन रुकेंगे, सुनाएंगे तो धर्म होगा। अभी कैसे करें धर्म, बिना पंडित जी के धर्म कैसे करें? ओहो आंखें खराब हो गई, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। जब तक चश्मा सही होके नहीं आएगा तब तक तो धर्म नहीं कर पा रहा हूँ। चश्मे से धर्म होता है, काम से कर्णेन्द्रिय से धर्म होता है। धर्म इस परतंत्रता का नाम है। धर्म में धर्म कहते ही उसे जो स्वाधीन हो, जहाँ स्वतंत्रता है जहाँ स्वाधीनता है वहाँ धर्म है, और जहाँ स्वाधीनता नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। और स्वाधीनता इस वस्तु जगत में इतनी है कि कण कण स्वाधीन है, तो फिर प्रत्येक वस्तु प्रत्येक कण कण स्वभाव से धर्मात्मा है, क्योंकि स्वाधीन है। हम उस स्वाधीनता को पहचानते नहीं है इसलिए दुखी होते हैं। हम अपनी कल्पना से सुखी और दुखी हो रहे हैं। तो मैं इतनी बातें हैं, हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं छोटी छोटी सी बातें सिद्ध करने के लिए कि तेरे हाथ में नहीं है वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। एक व्यक्ति बिजनेस करता है, $100 की चीज खरीदता है, कितने में बेचनी है बोलो? बेचने की राशि, बेचने का मूल्य तो हमें तय करना है ना। $100 में खरीदिए, बोलो कितने में बेचनी है मुकुंद भाई? कितने में बेचे? आपको उतनी राशि रख लें आपके हाथ में, कितनी रखें? 200?
नहीं नहीं
तो
7% बोल
रहे बस। क्या बात कर रहे हो? ओनली 7%। कीमत तो अपने हिसाब से, ये तो आपका तो कंपटीशन का बिजनेस है ना, इसलिए 7% में चलता है। बाकी तो आज के जमाने में 100 के 200 तो मामूली बात है। वो सोचता है 100 में खरीदी हुई चीज है, यूनिक चीज है, इसके तो 500 लेने चाहिए। ग्राहक दुकान पर आएगा क्या, उसको 500 बताऊंगा क्या? कम कराएगा तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे जो भी होगा, लेकिन कम कर करा करके भी 200 से कम तो नहीं बेचूंगा क्या? कहना मुकुंद भाई 100 में खरीदा है, 200 से कम नहीं बेचूंगा, 200 तक मैं बेच सकता हूँ, कीमत 500 बताऊंगा, जहाँ सेट हो जाएगा वहाँ ठीक है, अच्छी बात है। माइंड सेट है उसका, कम से कम डबल प्रॉफिट लेना है अपने को। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक ग्राहक उसके पास में आया और उसने पूछा भाई साहब कितने की मिलेगी, क्या बताएगा वो?
पहले 500
बताया उसने। उसने 500 बताया तो ग्राहक ने कहा 500 तो बहुत ज्यादा है, 300 में नहीं दोगे? क्या कहा?
300
में नहीं दोगे? अब बोलो दुकानदार को क्या करना चाहिए? 200 सोचे थे मिनिमम, 300 मिल रहे हैं, भेज देना चाहिए ना। वो सोचता है यार 500 के इसने 300 बोले हैं, मैं डायरेक्ट 300 बोल दूंगा अभी, हाँ कर दूंगा तो अच्छा नहीं है ये बात। उन्होंने कहा नहीं 300 तो बहुत कम हो जाएंगे, 400 ले, 400 लो। ग्राहक माना नहीं और चला गया। मैं आपसे पूछता हूँ, 200 तक बेचने की सोची थी, 300 मिल रहे थे, फिर क्यों नहीं बेचा? तेरे हाथ में नहीं है क्या? 300 मिल रहे थे उसके बावजूद भी तेरे हाथ में नहीं है। फिर पता है क्या होता है, एक दूसरा ग्राहक आता है क्या, उसने पूछा कितने, हमने कहा $500, उसने कहा 250 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, बोल क्या करना है। अब क्या करना है बोलो? यार पहले वाला तो 300 दे रहा था क्या, मैंने मुफ्त में जाने दिया क्या, ये 250 की बात कर रहा है, अब इसको कहता है कि नहीं नहीं 300 से कम नहीं दूंगा। पहले वाले को 300 में जाने दिया ना क्या, अब इसको कह रहा है 300 से कम नहीं दूंगा। अब कैसी परिस्थिति बन सकती है, ले तो ले और नहीं ले तो नहीं ले, तेरे हाथ में नहीं है कितने में सामान बिकना है। दुकान पर बैठ करके कितनी कोशिश करते हैं हम, इतने में बेचेंगे, इससे कम नहीं बेचेंगे, इतना बिक जाएगा, इतना ये हो जाएगा, हम कल्पना करते रहते हैं, हम योजना बनाते रहते हैं, लेकिन हमारी सारी योजनाएं फेल हो जाती है, सारे प्रयास धरे रह जाते हैं, क्योंकि वस्तु की स्वतंत्रता ये धर्म है और हम स्वतंत्रता को पहचानते नहीं है। जो स्वतंत्रता को पहचानते हैं उन्हें निराकुलता हाथ लगती है, और जो स्वतंत्रता को नहीं पहचानते हैं वे आकुलित होते हैं। जो आकुलित होते हैं वे कर्म का उत्कर्षण करते हैं, पाप कर्म का, और जो निराकुल रहते हैं वे पुण्य कर्म का उत्कर्षण करते हैं। बोलो, सहज शांत रहने वाले, निराकुल रहने वाले, उनके पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण होता है। प्रति समय कर्म बंद रहे हैं, बंधन से रहित आप कभी नहीं है, समझ लेना। नॉन स्टॉप चल रहा है बंधन रमेश भाई, नॉन स्टॉप हर समय, कब से चल रहा है और कब तक चलता, हमेशा ही। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक प्रति समय बंधन योग्य प्रत्येक कर्म प्रकृति आपके साथ में आकर के बंध रही है। परस्पर विरोधी में से जहां जहां जो योग्य है ना वैसी लगाना, प्रति समय बंध रही है, हर समय कर्म आकर के बन रहे हैं हमारे साथ में। हाँ जी, हर समय बन रहे हैं। तो पुण्य बन रहा है कि पाप बन रहा है, पुण्य बन रहा है या पाप बन रहा है?
भावों के
हिसाब से बन रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं हमारे जीवन में 99% तो पाप ही पाप हो रहा है, फिर भी अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहता है मिथ्यात्व के कारण। असली पाप तो वो मिथ्यात्व बैठा है, उसकी तो खबर नहीं है, और ऊपर ऊपर से सफाई किए जा रहा है, तो ऊपर की सफाई से क्या होगा, अंदर में वो बैठा है बिलाव, समझ गए ना आप, कहाँ बैठा है वो, कुएं में बिलाव गिर गया, बिल्ली गिर गई नीचे पेंदे में जाकर के बैठ गई, कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, कैसा आएगा पानी, कड़वा आएगा, खराब आएगा, बदबूदार आएगा। अब उस बदबू और खराब पानी को जब लोग गांव के पीते हैं तो यार तो बहुत खराब हो रहा है, क्या करें बोलो। अरे बिल्ली को निकालना तो आप कह रहे हो, वो गांव वाले तो कह रहे हैं शायद पानी खराब हो गया है, एक काम करो पूरा पानी खाली कर दो, कल नया पानी आ जाएगा, ये ठीक है? पूरा कुआ खाली कर दिया उन्होंने, दूसरे दिन फिर पानी भर गया, अरे यार ये फिर पानी खराब आ रहा है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? अंदर में बिल्ली मरी है, पहले उसको निकाल, ये मिथ्यात्व का बिलाव अंदर में बैठा हुआ है, पहले उसको निकाल, बाहर की सफाई से काम नहीं चलेगा। बाहर में कितने व्रत करो, कितने उपवास करो, कितने धर्म ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक अंदर का मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक कुछ भी काम होने वाला नहीं है। कोई काम नहीं होता है मिथ्यात्व को छूटे बिना, सबसे पहला स्टेप है मोक्ष मार्ग और धर्म की दिशा में, पहला स्टेप है मिथ्यात्व छूटना, नंबर वन, सबसे इम्पोर्टेंट काम। और ये मिथ्यात्व की तरफ इसका ध्यान नहीं है, बाकी सब ध्यान है, पूजन कैसे करनी है सीखता है, मंत्र कैसे बोलना है वो सीखता है, प्रक्षाल कैसे करना है उधर दिमाग लगाता है, ये पानी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या इधर का इधर चलता है, बोलो क्या क्या करता है तू, तेरी बुद्धि कहाँ लग रही है, कौन सी जगह पर तेरी बुद्धि काम कर रही है? असली काम तो मिथ्यात्व जाना था, तेरे को पता नहीं है, मिथ्यात्व जाने की तरफ तो तेरा ध्यान नहीं है। अरे दो पैसे की कमाई में मिलियंस का नुकसान कर रहा है, ये सोच रहा है सावधानी तो होनी चाहिए, ध्यान तो रखना चाहिए, तेरे दो पैसे की कमाई नहीं होनी है, दो सेंट की कमाई नहीं होनी है तेरे को, अब मिलियंस का नुकसान हो रहा है तेरे को, उसकी खबर नहीं है, कैसे कर रहा है नुकसान, अपने परिणामों से कर रहा है नुकसान, बिगाड़ रहा है, निरंतर बिगड़ रहा है। मिथ्यात्व नंबर वन, सबसे पहले नंबर पर चीज यदि कोई जाएगी धर्म के नाम पर तो मिथ्यात्व जाएगा। ये कैसे जाएगा साहब, वही परिणामों को संभालो, लेकिन ध्यान रखना परिणामों को संभालने की चक्कर में आप परिणामी से दृष्टि ना हट जाए, तो ये परिणामों को संभालना है, लेकिन परिणाम कैसे संभलते हैं, अपरिणामी की दृष्टि से परिणाम संभलते हैं, क्या
स्वभाव की
तरफ से परिणामों को संभालने का उपाय परिणामों को देखना नहीं है, परिणामों को संभालने का उपाय अपरिणामी तत्व को देखना है, अपने ज्ञायक तत्व को देखना है, त्रिकाली ध्रुव को देखना है, उसको देखो तो काम होगा। है तैयार उसको देखने के लिए, उसका स्वरूप जानने के लिए? अंदर में रत्न भरे हैं भाई, अंदर में खजाना है तुम्हारे पास में, देखो तो सही एक बार, फूटी आंख से ही देखो, एक बार देखो अंदर के खजाने को। जो व्यक्ति अंदर का खजाना देखता है फिर उसे पुण्य की चाह नहीं होती, फिर उसे पुण्य में रस नहीं आता। जिसे वो चीज दिख गई ना, अब पुण्य का रस कैसे दिखेगा?
वो
अभी सोचो, वो व्यक्ति $250 में क्यों नहीं बेच रहा है? $200 सोचा था, $100 की चीज थी, $250 मिल रहा है, क्यों नहीं बेच रहा है? क्योंकि वो 300 देख चुका है। मैं कहता हूँ आपके पास में शेयर्स है, शेयर खरीदे आपने, ₹10 के खरीदे हुए, ₹1,00,000 रेट हो गई उसकी, ₹1,00,000 रेट हो जाने पर अब डाउन हो गया, 60,000 रह गया, आप बेचेंगे कि नहीं? 1,00,000 तो पहले ही देखा था। मैं कह रहा था, अब तो इसको लगता है जैसे नुकसान में बेच रहा हूँ, ऐसे लग रहा लॉस में कैसे दे सकता हूँ मैं, 40,000 का लॉस हो रहा है। अरे तेरा ₹10 का खरीदा हुआ था, 60,000 मिल रहा है, तू कह रहा है 40,000 लॉस, हमें तो 60,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। कि नहीं नहीं, एक बार वो रेट देख चुका है ना व्यक्ति, उस चीज को देख चुका है, तो फिर वो कम पोसाता नहीं है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है भाई, ऐसा ही होता है। तो एक बार ज्ञायक के खजाने को देख, जो सम्यक दृष्टि, जो भेद विज्ञानी, जो आत्मानुभवी अंदर के खजाने को देख लेते हैं, उन व्यक्तियों को फिर पुण्य पोसाता नहीं है। अब नहीं चाहिए हमारे को पुण्य, अब पुण्य का सौदा नुकसान का दिखता है। भले ही पाप की तुलना में सारी दुनिया ये कहे अच्छा है, पाप की तुलना में अच्छा कहे, लेकिन फिर भी पोसाता नहीं, जचता नहीं है हमारे को, पसंद नहीं आता है हमारे को। क्यों नहीं पसंद आ रहा है? एक बात और कहूँ, मार्मिक बात, ये पुण्य पाप कर्म दोनों साथ में हैं, ये जुड़वा हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तुम्हारे पुण्य के साथ में पाप निरंतर बन रहा है, नॉन स्टॉप बन रहा है रमेश भाई, हर समय। अच्छा, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, पुण्य बन रहा है कि पाप बन रहा है? बोलो,
दोनों बन रहे
हैं,
मिथ्यात्व के साथ,
यही तो है भाई साहब चक्कर। क्या? अच्छा चलो, दोनों बन रहे हैं, कोई बात नहीं। जब हम बैठ करके डोसा खा रहे होते हैं तब पुण्य और पाप दोनों बन रहा होता है ना? फिर
भी
उस समय अकेला पाप बन रहा है, बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं तो पुण्य के साथ में पाप भी बन रहा है। इसका मतलब जो लोग पुण्य बांधना चाहते हैं उनके ऑटोमेटिक पाप भी बनता है, जो पुण्य क्रियाओं में लगे होते हैं उनके पाप भी बनता है। हाँ, ऐसा ही स्वरूप है भाई। शुभ योग से और अशुभ योग से, दोनों ही प्रकार के योग के काल में सभी कर्म प्रकृतियां बनती रहती है। योग तो जानते हैं ना, मन वचन काय, मन वचन काय की चंचलता। यदि ये पाप की तरफ हो तो अशुभ योग है, यदि ये पुण्य की तरफ हो तो शुभ योग है। अब यदि ये पाप की तरफ है, मान लीजिए अशुभ योग है, तब तो पाप प्रकृतियां बनेगी सारी, और शुभ योग है तो
दोनों।
अब शुभ योग है तो दोनों, ये क्या चक्कर है? बस जो व्यक्ति, जो ज्ञानी जीव इस रहस्य को समझ लेता है, वो जान जाता है कि यार ये पुण्य की चाह का मतलब है पाप भी साथ में आएगा। अब बोलो क्या करना है? यदि तुम पाप बिल्कुल नहीं चाहते हो तो पुण्य भी मत चाहो, क्योंकि पुण्य के साथ में आएगा था पाप, तो क्या करना है बोलो? उसके साथ वो तो आएंगे। यदि आप ये चाहते हो उनको नहीं बुलाना तो फिर उनको भी मत बुलाओ। आप चाहते हो पाप को नहीं बुलाना है तो पुण्य को भी मत बुलाओ, पुण्य को भी निमंत्रण मत दो, क्योंकि पुण्य के साथ में पाप तो आएगा। उस फैमिली को बुलाओगे तो वो अपने बच्चों को साथ में लाएगा, देखना तुम्हारे तोड़फोड़ करेंगे। तुम बच्चों को नहीं चाहते हो तो फैमिली को मत बुलाओ, क्या करना है बोलो? अरे यार बहुत गड़बड़ है, तो उनको तो बुलाना चाहते हैं लेकिन बच्चे आते हैं तो उनसे परेशान रहते हैं, वो नहीं आए। बस आप बच्चों को छोड़ के आ सकते हो? छोटे बच्चे हैं, 2-4 साल के बच्चे हैं, इनको तो छोड़ के नहीं आ सकते। हम आएंगे तो ये हमारे साथ में आएंगे, पुण्य के साथ में पाप भी आएगा। चाहिए आपको पुण्य? का पाप आता है, इसलिए ज्ञानी जीवों को पुण्य नहीं चाहिए। समझदार होते हैं वो पुण्य नहीं चाहते हैं, ना समझ होते हैं वे पुण्य की तरफ आकर्षित होते हैं। अभी देखो क्या कहा हमने, सम्यक्त्व हुए बिना, सम्यक्त्व यदि नहीं है तो घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां जो कि पाप रूप है वे बंध रही है, और इस मिथ्यात्व के कारण तुम्हारा पुण्य भी पूरा का पूरा संक्रमित हो जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो महेंद्र भाई ये पुण्य थोड़े समय में पूरा का पूरा संक्रमित हो जाता है पाप में, थोड़े समय में। मैक्सिमम लिमिट बताऊं कितनी है मुकुंद भाई, मैक्सिमम लिमिट है 2000 पागर।
ओ हाँ,
ये उत्कृष्ट लिमिट है। इस लिमिट के बाद में क्या होगा, फिर कितना पुण्य काम आएगा बताओ। जब आपका टाइम पूरा हो गया उसके बाद में बैलेंस बचा हुआ पुण्य का क्या होगा? अरे क्या बैलेंस बचेगा, सारा का सारा बैलेंस पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। चल निगोद में, तेरे पुण्य की जरूरत नहीं है। पुण्य की जरूरत क्यों नहीं है, उसका पुण्य पाप में क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि पुण्य मिला था उसे धर्म करने के लिए। पुण्य मिला माने पुण्य कौन सा? देखो धन संपत्ति मिलना एक प्रकार का पुण्य है, और जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना उत्कृष्ट जाति का पुण्य है। आपको कौन सा वाला पुण्य चाहिए? सारा जगत विषय भोग वाला पुण्य चाहता है, सारे जगत को पंचेंद्रिय भोग वाला पुण्य चाहिए। हम कह रहे हैं भाई साहब भोग वाला पुण्य नहीं, ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिले ये पुण्य, पुण्य के उदय से मिला था ये अवसर और तूने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो अब पुण्य कहता है कि मैं नहीं टिकूंगा, मेरा तो काल आ गया, समय हो गया है पूरा, तेरा पुण्य मुझे अच्छा लग रहा है। अरे पुण्य तेरे को तो मैं चाहता हूँ कि तू भले ही मुझे चाहता हो, लेकिन तेरे को मौका दिया था कि तू मुझे मुक्त कर देगा, लेकिन तूने मुझे मुक्त नहीं किया, मैं पाप में बदलता हूँ। टाइम होता है निश्चित, उस टाइम पीरियड में यदि आपने काम कर लिया तो ठीक है, काम नहीं किया तो क्या होगा? एग्जामिनेशन हॉल में आपको कॉपी मिली है 3 आवर्स के लिए, यदि आपने 3 घंटे में काम कर लिया तो ठीक है, और काम नहीं किया तो क्या होगा? पेपर ले लेंगे आपके, खत्म, बस बैक टू वापस बैक टू पवेलियन। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको पुण्य के उदय से ये संयोग मिले हैं, ये साधन मिले हैं। मुकुंद भाई नहीं मिलते हैं ये साधन, जैनियों को नसीब नहीं है जिनवाणी की बात सुनना, अन्य मत की क्या बात करें अपन, जैनियों को नसीब नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है। अब आगे है वो जिनको जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो तरसते हैं लेकिन बेचारों को मिलती नहीं है, सुनने को नहीं मिलती है, और अभी सुनने को मिल रही है, कान मिल गए हैं हमारे को, ये छूट जाएगा तो फिर क्या होगा? अधोगति में जाएगा, वहां कर्ण नहीं मिलेगा, वहां चक्षु इंद्रिय नहीं होगी, वहां कोई सुनाने वाला नहीं होगा। एक बिल्ली बन के यहाँ यदि उसको पता लगे कि महेंद्र भाई के घर में चर्चा चल रही है, चलो मैं सुनने के लिए चलती हूँ, जाति स्मरण हो जाए उसको, और यहाँ आए सुनने के लिए, तो बैठने नहीं देगा कोई, लकड़ी मार के भगाएगा उसको, पत्थर मार के भगाएगा, सुन नहीं सकता है। क्या करें बोलो, ये पुण्य जो मिला है हमारे को ये धर्म करने का चांस है। पाप से पुण्य में आया, अब पुण्य से वापस पाप में जाना है या पुण्य से धर्म की तरफ बढ़ना है? ये पुण्य कन्वर्ट हो जाता है, 2000 पागर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पुण्य का आकर्षण ये पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर देता है। महादुख संकट निकट है ऐसा कहते हैं अमृतचंद्राचार्य, महादुख संकट बहुत नजदीक है, दुख नजदीक है, संकट नजदीक है, महासंकट नजदीक है, तुझे वो नहीं दिखाई देता है। तो क्यों नहीं दिखता है हमारे को समझ में नहीं आता है, आपको फ्यूचर क्यों नहीं दिखता है, आपको भविष्य क्यों नहीं दिखता है? दुनिया का हर व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है, तुम्हें नरक क्यों नहीं दिख रहा है, तुम्हें त्रियंश दशा क्यों नहीं दिख रही है, तुम्हें एकेंद्रीय आदि दशाएं क्यों नहीं दिख रही है, तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा है आज मेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो मैं कषायों को लेकर के कहां जाऊंगा, ये क्यों परिणाम आता है कि मैं दूसरे का बुरा कर दूं, दूसरे का अहित कर दूं, ये परिणाम क्यों आता है? तेरे अहित करने के परिणामों से तेरा अहित हो रहा है, ये नहीं दिख रही है तेरे को बात? एक कुम्हार था, घड़े बनाता था, एक माली था, गांव में रहते थे, माली फल सब्जियां उगाता था, दोनों दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, सगे दोस्त थे, बहुत अच्छे। माली अपने फल सब्जियां उगाई, कुमार ने अपने घड़े बनाए, चलता रहा ऐसा। और जब तैयार हो गए सब अच्छा, तो एक कैमल लेकर उसके ऊपर दोनों तरफ लाद कर क्या शहर में बेचने के लिए जा रहे थे। ठीक है, अब सब्जियां रखी ऐसे ऊंट के ऊपर, एक तरफ सब्जियां एक तरफ घड़े, ऊंट के ऊपर काफी सारा सामान लेकर के वो चल रहे हैं। रास्ते में जो कुम्हार था वो पीछे पीछे चल रहा था, और जो माली था वो कैमल के आगे चल रहा था, दोनों ध्यान रख रहे थे। आगे वो रस्सी पकड़ करके चल रहा था, ये पीछे से ध्यान रख रहा था। रास्ते में चलते चलते रमेश भाई, थोड़ी दूर चलने के बाद चलते चलते कैमल को थोड़ी सुगंध आई फल सब्जियों की। उसको सुगंध आई तो उसने अपनी गर्दन घुमाई, और गर्दन घुमाई तो क्या हुआ, गर्दन घुमाई तो सब्जी खाने लगा। अब पीछे कुमार को क्या चाहिए था बताओ,
घड़े को बचाना है,
घड़े को भी बचाना है, और ये खा रहा है तो इसको भी नहीं खाने दे, दोस्ती तो है। लेकिन उसने क्या सोचा, उसकी सब्जियां खा रहा है, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, खाने दो खाने दो, कोई बात तो नहीं। और धीरे धीरे करके आगे चलता रहा, और ऊंट वो सब्जियों को खाता रहा, तो एकदम धड़ाम से आवाज आई कि क्या हुआ, जिधर सब्जियां थी उधर का वजन ऊंट के खाने से कम हो गया, और क्या हुआ कि इधर गिरा धड़ाम से मटके की तरफ, सारे घड़े फूट गए और सब्जियां उसके ऊपर आकर के सुरक्षित। क्या हुआ, माली का नुकसान हो रहा था, ये मजे से देख रहा था, ये प्रसन्न हो रहा था क्या, लेकिन नतीजा क्या निकला, अरे उसका तो थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ी सब्जियां खाई माली की, लेकिन कुमार का तो पूरा ही नुकसान हो गया। दूसरे के नुकसान की परवाह नहीं करने वाले अपना पूरा नुकसान कर लेते हैं, दूसरे की चिंता नहीं करने वाले व्यक्ति क्या, दूसरे का बुरा सोचने वाले व्यक्ति अपना स्वयं का बुरा कर लेते हैं। भाई तेरा बुरा कोई दूसरा नहीं करता, तेरा बुरा तेरे परिणामों से होता है। ये बहुत बड़ी पावर है, रोज कह रहे हैं हम आपको, आपके पास में ये पावर है, अच्छाई की पावर है। अच्छाई देखो, अच्छाई इकट्ठी करो, जिनके पास अच्छाई इकट्ठी होती है वे अच्छे बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तुम तो अच्छाई के समुदाय हो भाई, अच्छाइयों की कमी नहीं है, स्वभाव को क्यों नहीं देखते हो। देखो हम दो तरह की बात कहते हैं महेंद्र भाई, किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए दो एंगल हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो दो नए बतलाए हैं, या द्रव्यार्थिक के पर्यायार्थिक, दो के अलावा कोई तीसरी अपेक्षा नहीं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को देखो तो या तो द्रव्य दृष्टि से देखो या पर्याय दृष्टि से देखो, दोनों में से कोई भी किसी में भी नुकसान नहीं है। द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो भी नुकसान नहीं है, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो भी नुकसान नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, हमने तो सुना है द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। मैं कह रहा हूँ सुनो, आपकी घर गृहस्थी की शांति के लिए वो कल जैसा अनुष्ठान बतलाया था, गृह शांति अनुष्ठान क्या, उसके लिए आप द्रव्य दृष्टि से देखो तो भी शांति है, और पर्याय दृष्टि से देखो तो भी अशांति नहीं है। नहीं समझ में आया ना बात, देखो मैं बताता हूँ आपको। द्रव्य दृष्टि से देखो तो आपको अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चे, अपने परिवार वाले, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने देवरानी जेठानी, अपने मित्र, अपने सगे संबंधी, अपने साधर्मी, सब कैसे दिखेंगे द्रव्य दृष्टि से देखने पर, आत्मा दिखेंगे। द्रव्य दृष्टि से देखने पर हमें तो भगवान दिखते हैं ना, द्रव्य दृष्टि से कैसे दिखेंगे, सब भगवान है तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा, द्रव्य दृष्टि से देखने पर कोई झगड़ा नहीं होगा। अरे जैसे अरहंत भगवान अनंत गुण संपदा से युक्त हैं, वैसे ही ये बच्चे भी अनंत गुणवान हैं, प्यार से बोलो इनसे, ये भी भगवान है। द्रव्य दृष्टि से देखने पर कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से जैसा मैं वैसे ही, जैसे ये वैसे ही, सब एक समान है। अब ये कदाचित आप कह सकते हैं द्रव्य दृष्टि से नहीं पंडित जी, पर्याय दृष्टि से देखने पर तो झगड़े होते हैं। बोलो, पर्याय दृष्टि से देखने पर तो ये पापी दिख रहा है, पर्याय दृष्टि से देखने पर तो ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया है, दिख रहा है ना पर्याय दृष्टि से देखने पर। अब तो झगड़ा विवाद होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूँ फिर भी नहीं होगा, क्योंकि तुम पर्याय का मतलब नहीं समझते हो। पर्याय का मतलब क्या होता है? पर्याय का मतलब ये है जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जो टेम्परेरी है तुम उस पर्याय से देख करके तो ये देखो कि इसने जो मुझे गाली दी है वो शाश्वत नहीं है, ये जो मेरा शत्रु है वो शाश्वत नहीं है। कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, कोई परमानेंट मेरा बुरा नहीं कर सकता है। बोलो, जब कोई व्यक्ति परमानेंट मेरा बुरा कर ही नहीं सकता, अरे मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं, किससे राग करें और किससे द्वेष करें, मित्र शत्रु हो जाते हैं, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। अब शत्रु है, पर्याय दृष्टि से देखो, चिंता मत करो, शत्रुता वाली पर्याय परमानेंट नहीं है। द्वेष करने का क्या काम है, कैसे करें हम द्वेष? ये पुण्य और पाप द्रव्य है कि पर्याय है? पुण्य पाप को द्रव्य दृष्टि से देखो तो पुद्गल दिखाई देते हैं, और पुण्य पाप को यदि आप पर्याय दृष्टि से देखते हो तो पुण्य पाप बदल जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है। क्या करें, दोनों एक जैसे दिखते हैं हमारे को। इतना एकता है पुण्य और पाप दोनों में कि पुण्य और पाप दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, हमें दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए एक की भी चाह नहीं हो सकती हमारी दृष्टि से। न पुण्य को चाहेंगे न पाप को चाहेंगे, ज्ञानी धर्मात्मा तो धर्म को चाहेंगे। वो धर्म कैसे होगा? कषायें होती है, कषायों से क्या होता है, हमारी वर्तमान कषाय से क्या इफेक्ट पड़ता है, पुण्य प्रकृतियों में क्या होता है और पाप प्रकृतियों में क्या होता है, कौन सी प्रकृतियों में पुण्य का उत्कर्षण होता है, कौन सी में पुण्य का अपकर्षण होता है, क्या करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत संक्षेप में बतलाता हूँ, दो तीन मिनट में बतलाता हूँ। मार्मिक बातें, कर्म प्रकृतियों से रिलेटेड बातें हैं। पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, इनको आपको कैसे बांटना है? स्थिति बंद, स्थिति में बांटो सबसे पहले। स्थिति बंद है ना, प्रकृति प्रदेश बंद और स्थिति अनुभाग बंद। स्थिति प्रकृति प्रदेश से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है हमारे, प्रकृति प्रदेश बंद इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है, दुखी करने में भी समर्थ नहीं है। योग से होता है, योगों की चंचलता से होता है। असली कारण क्या है? स्थिति बंद और अनुभाग बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। अब स्थिति बंद कैसे परिणामों से कैसा होगा, कितनी कर्म प्रकृतियां हैं? 148 बंधन योग्य काम है, 120 कही है क्या, जो भी है। अभी अपन तो सिर्फ प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। टोटल जितनी है उनमें से तीन कर्म प्रकृतियों को एक तरफ रख दो। अभी कौन कौन सी तीन? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। सुनो सुनो सुनो, उनमें तीन कर्म प्रकृतियों को एक तरफ रखना है, जिनमें अपने को रखना है मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और देवायु। इन तीनों को एक तरफ रख दो, इन तीन आयु कर्म प्रकृतियों को एक तरफ रख दो, और बाकी सब जितनी कर्म प्रकृतियां थी अभी उनकी बात कर रहे हैं अपन। बाकी नरक आयु भी और बाकी सब कर्म प्रकृतियां भी, सब की बात कर रहे हैं अभी अपन। अभी बात करना है स्थिति के बारे में। अच्छे परिणाम हुए हमारे, क्या अच्छे परिणाम हुए? तो अच्छे परिणामों से क्या होगा, उन सब की स्थिति कर्मों की कम पड़ेगी। उज्जवल परिणामों से कर्मों की स्थिति कैसी पड़ती है? कम पड़ती है। अच्छा, और खोटे परिणाम हुए तो कर्म ज्यादा समय के लिए बंधेगा। यदि आप कर्मों को ज्यादा लंबे समय के लिए बांधना चाहते हो तो खोटे परिणाम करो, आप यदि कम समय के लिए बांधना चाहते हो अच्छे परिणाम करो। सीधे सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है स्थिति बंद में अभी। लेकिन वो जो तीन आयु थी, उन तीन आयु कर्म में अलग स्थिति बढ़ती है, उनमें उल्टा होता है मामला। उन तीन आयु कर्म में अच्छे परिणामों से स्थिति ज्यादा पड़ती है, छोटे परिणामों से स्थिति कम पड़ती है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ गणित समझा रहा हूं मैं, कुछ बात ख्याल में आ रही है? ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है। ढंग से समझो इसको, स्थिति बंद समझा रहा हूं मैं। स्थिति बंद किसका नाम है?
तो कर्म की स्थिति नष्ट करता है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन,
टाइम,
टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसी भी कर्म बंधन के संदर्भ में आपको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? आपके फेवर में क्या है बात? है? कर्म कर्म कोई भी हो, ज्यादा लंबे समय के लिए बंधन तो अच्छा नहीं है। एक में ज्यादा समय का बंधन है, एक में कम समय का बंधन है। जब कर्म का बंधन ज्यादा समय के लिए होता है, क्या इसका मतलब स्थिति ज्यादा पड़ी है? जब कर्म का बंधन कम समय के लिए होता है, इसका मतलब स्थिति कम पड़ी है। ठीक है, परिणाम बिगड़े, स्थिति ज्यादा। परिणाम बिगड़ेंगे तो स्थिति ज्यादा, और परिणाम सुधरे तो स्थिति कम। कितनी कर्म प्रकृतियों में? तीन को छोड़कर बाकी सब में, बराबर है। अब इन तीन में क्या होता है? परिणाम बिगड़ेंगे क्या तो स्थिति कम। वाभी क्या कहा था? ज्यादा कही थी, परिणाम बिगड़ेंगे तो मनुष्य आयु कम समय की स्थिति वाली बनेगी, परिणाम बिगड़ेंगे तो तिरंच आयु कम स्थिति वाली बनेगी, परिणाम बिगड़ेंगे तो देवायु कम स्थिति वाली बनेगी, और परिणाम सुधरेंगे तो मनुष्य तिरंच और देवायु ज्यादा स्थिति वाली बनेगी। स्थिति तो समझ में आ गई? अब अनुभाग बंध में मैटर अलग प्रकार का है, फल कैसा मिलेगा? स्थिति का मैटर तो अलग हो गया, अनुभाग बंध का क्या मैटर है? समझ में? अनुभाग बंध में क्या होता है? उसमें बंटवारा करना है पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, दोनों ही प्रकृतियों में अनुभाग पड़ रहा है प्रति समय के भावों से। स्वाध्याय करने के भावों से हम यहां आकर के बैठे, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा हो रहा है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम हो रहा है। बोलो, यहां आकर के बैठे तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस में प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है जनवाणी सुनने के परिणामों से, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो जो पाप के उदय से जो बैड डेप्थ हो गए थे क्या, वो कम हो रहे हैं। पुण्य का अनुभाग बढ़ता है और पाप का अनुभाग घटता है अपने आप, स्थिति कितनी भी हो, यही हमारे हित में। और परिणाम करो खोटे तो क्या होगा? पाप का अनुभाग बढ़ेगा और पुण्य का अनुभाग घटेगा। ऐसी व्यवस्थाएं बनती है। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं ना, उससे ये चल रहा है उतार चढ़ाव। इसको कहते हैं बिजनेस। आप कौन सा बिजनेस करते हैं हमें नहीं मालूम, हम कहते हैं ये बिजनेस 24 घंटे चल रहा है,
सुबह
सुबह शुभ का व्यापार, नींद के काल में भी चल रहा है, कोमा में हो तब भी चल रहा है, बेहोशी की हालत में भी चल रहा है, बेचेत पड़े हो तब भी चल रहा है, हर समय चल रहा है ये व्यापार, कब नहीं चल रहा है? शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ निरंतर चलता रहता है। इसलिए अशुभ से बचो, शुभ में आओ, और शुभ से भी आगे बढ़कर शुद्धोपयोग की प्राप्ति करो। असली काम वो करने लायक है, दृष्टि हमारी वहां नहीं है। बस संक्रमण की जैसी चर्चा सुनी ना हमने, और उत्कर्षण और अपकर्षण की चर्चा सुनी, बस पुण्य पाप में उलझ करके रह गए। सही कह रहा हूं मैं? कर्म प्रकृतियों की चर्चा, उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण महत्वपूर्ण बातें हैं, यद्यपि गोमटसार कर्मकांड के अनुसार, और अच्छी भी लगती है हमारे को, लेकिन उन चर्चाओं को सुनकर के हम वहीं अटक करके रह जाते हैं कि पाप को पुण्य में बदल लो, पाप का संक्रमण पुण्य में हो जाए, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण हो जाए, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो जाए, बस इसमें बदल करके रह गए हम। सारी बुद्धि हमारी यहीं तक, मजा आ गया, क्या पुण्य बन गया भाई, वाह वाह वाह, कैसा पुण्य चाहिए, चक्रवर्ती जैसा, छह खंड की विभूति मिल जाए ऐसा पुण्य चाहिए, छह खंड की विभूति जैसा पुण्य, आपके पुण्य के आगे पानी भर रहा है महेंद्र भाई, क्या कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, ध्यान देना, आप यहां सामने बैठ करके सुन रहे हैं, आपका पुण्य और छह खंड जीतने के लिए जाने वाले चक्रवर्ती का पुण्य, दोनों के पुण्य में से आपका पुण्य ज्यादा कार्यकारी है, ज्यादा काम का है, ज्यादा वैल्यू है उस पुण्य की। दो प्रकार के पुण्य है, एक पुण्य से संपत्ति है और दूसरे पुण्य से ये तत्व ज्ञान है, सुनने का अवसर, बोलो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, तत्व ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है, सच में तत्व ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है, कहने के लिए तो ज्यादा ही है पंडित जी। और जब मिलने की बात करेंगे तो हम इसको छोड़ करके उधर भागते हैं, सहनी है कि असहनी है, सही बताओ, हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक तरफ ये है कि वहां जाऊंगा तो उसके साथ में मीटिंग है और वो $500-700 का कुछ काम अच्छा होना है, वहां $5,000-7,000 की डीलिंग होनी है कुछ, और इधर आज स्वाध्याय का दिन है, बोलो क्या करना, दोनों में से क्या छोड़ करके किधर जाना, स्वाध्याय तो रोज होता है,
तो फ्री है, तो मुफ्त में मिलता है,
मुफ्त में मिलता है, वैल्यू भी नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने टिकट लगा दिए हैं तो उनकी संख्या बढ़ गई है, उनके प्रवचनों की वैल्यू बढ़ गई है, ऐसा दुनिया में हो रहा है कई जगह पर, आप टिकट लगा दो, अगली बार मैं आऊं तो आप नक्की करना प्रवचन सुनने के लिए आने का $100 फाइन, $100 का टिकट, $100 के बिना एंट्री नहीं है आपकी, देखना कितने लोग आएंगे, लगेगा कुछ स्पेशल चीज, इस बार ऐसी स्पेशल चीज मिलने वाली है, उस स्पेशल चीज के लिए $100 की इसका टिकट रखा गया है, जो आना चाहते हो, लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है, लाइफ बदल जाती है, सच में लाइफ चेंजिंग तो है ही ना ये सब चीजें, ये भाई साहब धर्म स्वाध्याय को छोड़ करके उधर भागता है, और जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इस तत्व ज्ञान की कीमत करते हैं वो संपत्ति इनके चरणों में आकर के लौटती है, और ये कहते हैं जग को दे दी जग की निधियां, हमें नहीं चाहिए, चरणों में आकर के पड़ती है, चक्रवर्ती का पुण्य किसके बंधता है, सम्यक दृष्टि होगी, बांध लो आप चक्रवर्ती का पुण्य, बांध सकता है कोई व्यक्ति, कितने बिजनेस चलाए, कितनी नौकरियां करे, कितना पैसा इकट्ठा करे, कितनी जगह पर अधिकार करे, कितने इलेक्शन लड़े, कितने चुनाव कराए, कितनी सेना इकट्ठी करे, क्या करे वो कि चक्रवर्ती बन जाए, बोलो मुझे चक्रवर्ती बनना है,
सम्यक दृष्टि होना चाहिए,
तू सम्यक दृष्टि होगा तो तुझे चक्रवर्ती पद चाहिएगा नहीं,
नहीं
जिनको चक्रवर्ती पद चाहिए नहीं उनको चक्रवर्ती चरणों में आकर के पड़ता है पद, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, नारायण पद, प्रतिनारायण पद, ये जो सौधर्म इंद्रादिक पदवियां हैं, ये पदवियां सम्यक दृष्टियों के चरणों में आकर के पड़ती है, और सम्यक दृष्टि फिर भी उनको लात मारता है, हमें नहीं चाहिए, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, कव्वे की कागले की बीट के समान, सम्यक दृष्टि लोग गिनते हैं, क्या कीमत है, क्या दम है, कुछ नहीं चाहिए हमारे, उनको फ्यूचर दिख रहा है, ये कह रहे हैं आचार्य देव हमें इसका भाग्य दिख रहा है, एक के पास में इतनी संपत्ति है, नौकर चाकर इशारे पर काम होता है, और दूसरा व्यक्ति शांति से बैठ करके जनवाणी सुन रहा है लेकिन शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी इसको भाग्यशाली कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भाग्यशाली, नहीं जनवाणी सुन लिया तो भाग्य क्या हो गया, हमें तो नहीं लगता जनवाणी सुनने से भाग्यशाली है हम, आपको लगता है जनवाणी सुनने से आप भाग्यशाली हो, मेरे मेरे कहने से मत बोलना, मुझे मालूम है दो चार दिन में कई बार कही है मैंने ये वाक्य, जनवाणी सुनने से भाग्यशाली है, और मुझे मालूम है मेरी बात को सुनकर के आप मेरे को खुश रखने के लिए ही कहोगे हाँ जनवाणी सुनने वाला है भाग्यशाली है, क्यों है वो भाग्यशाली ये बताओ, वो भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं शास्त्रकार कि हमें दिख रहा है तू इससे निराकुलता प्राप्त कर लेगा, हमें दिख रहा है कि जिनवाणी को सुनकर के तेरे को सम्यक दर्शन होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, स्वरूप में लीनता होगी, इस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें तेरे पांव उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो दिशा सिद्धालय की तरफ जाती है, हम इसलिए तुझे भाग्यशाली कह रहे हैं।
संसार का अभाव
होगा, हम इसलिए तुझे भाग्यशाली कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है इस बात का कि आज तेरे पास में शाम के रोटियों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमें पता है तेरा वो भाग्य उदय आने वाला है कि चक्रवर्ती अपना मुकुट ले जाकर के तेरे पैर में धरेगा, ये संयम होगा तेरे जीवन में, वातिंद्रिय आनंद होगा तेरे जीवन में, ये बात पता है हमारे को, इसलिए हम कह रहे हैं ये अब भाग्यशाली है, ये सुनने वाला भाग्यशाली है। जिनवाणी सुनना साधारण चीज नहीं है, ये बहुत आसान नहीं है। ये साहब इसमें क्या लगता है, आजकल तो हर किसी के हाथ में है, इंटरनेट पर है, यूट्यूब पर है, वेबसाइट्स पर है, सब जगह पर है, जहां देखो वहां व्हाट्सएप पर है, खूब मिलती है जिनवाणी आज तो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, सुनते नहीं है लोग, फॉरवर्ड करने में लगे हैं सब, जीवन में कोई नहीं उतारता है, बस जैसे ही कुछ आया करो फॉरवर्ड, भेजो सबको। नहीं भाई, जीवन में उतारो, अकेला भेजने से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन में उतारो, प्रैक्टिस करो वेद विज्ञान की। क्या महेंद्र भाई, प्रैक्टिस करो वेद विज्ञान की, बस कब करें वेद विज्ञान की प्रैक्टिस, मंदिर में बैठे हों तब के स्वाध्याय में बैठे हों तब,
24 आवर्स 24/7
इज इट पॉसिबल,
पॉसिबल
है,
yeah,
हर समय क्या करना है बोलो, काम बतलाता हूँ आपको क्या करना है लाइफ में, एक साल के लिए काम देके जाता हूँ,
होमवर्क
देके जाता हूँ, क्या करना है आपको, आपको काम ये करना है कि जब भोजन की थाली पर बैठो तो विचार करना मैं भोजन करने वाला हूँ कि जानने वाला हूँ, प्रैक्टिस करो, ये हाथ से मैंने इसको तोड़ा है, मुंह में रख रहा हूँ, मैं इस कार्य का करता हूँ कि मैं इस कार्य का ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ या करता हूँ, नहाते समय मैं नहाने की क्रिया को जानने वाला हूँ कि करने वाला हूँ, खाने की क्रिया में, भोजन की क्रिया में, घूमने की क्रिया में, दुकान पर बैठे हुए, बोलते हुए, चलते हुए, हर क्रिया के संदर्भ में निरंतर ये भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए रमेश भाई, निरंतर चलनी चाहिए कि मैं जड़ क्रियाओं का कर्ता धरता नहीं हूँ, मैं जड़ का कर्ता धरता नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, और मैं आपको गारंटी देता हूँ सुबह से शाम तक 200 बातें आपके दिलो दिमाग में ऐसी आएगी जो आपको निर्णय को मजबूत करेगी कि यार बात तो सही है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने कहा ये सब्जी बननी चाहिए, क्या और उन्होंने कहा ये नहीं ये बननी चाहिए, आज तो यही बनेगी, और झगड़ रहे हैं दोनों, और किचन में गए और मालूम चला कि दोनों ही नहीं बनी, तीसरी बन गई। क्या देखो भाई, वस्तु का परिणमन कितना स्वाधीन है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, हम उसके कर्ता नहीं है, हम पर पदार्थ के कर्ता नहीं है, हम जड़ पदार्थ के कर्ता नहीं है, हम उनके क्रियाकलापों के कर्ता नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगी, सुबह से शाम तक अपनी लाइफ को देखेंगे तो आपको बराबर ये बात समझ में आएगी, बस जैसे ये बात समझ में आए हाईलाइट करो उसको, अभ्यास उसका करना है, प्रैक्टिस उसकी करनी है, आप प्रैक्टिस किसकी कर रहे हो, क्या वो तीर चलाता था बतलाया मेरे को कल महेंद्र भाई ने, एक धनुषधर क्या कहेंगे उसको, धनुष तीर बाण चलाने वाला व्यक्ति, तीरंदाज सामने लगाता था वो गोला और उसके अंदर बीच में एक डॉट, बहुत दूर 100 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के तीर चलाता था, एक तीर चलाया उसने, सीधा तीर जाकर के लगा वहां बीच में तीर लगा उसके, उसने कहा आसपास वाले प्रशंसा करेंगे मेरी, कितना गजब काम किया है, बगल में जो उसका साथी खड़ा था उसने कहा इसमें क्या दम है, तो अभ्यास की बात है, अच्छा एक और चला के दिखाता हूँ देख, ये कुछ तुक्का थोड़ी ने था, तीर चलाया था मैंने तो, एक और चलाया उसने और दूसरा तीर लगाया और दूसरा उसी के वहीं जाकर के लगा सेंटर में, कितना गजब निशाना है, तो इसमें क्या हो गया, ये तो प्रैक्टिस की बात है, क्या क्या था, प्रैक्टिस की बात है, अच्छा फिर तीसरा चलाया फिर चौथा चलाया एक के बाद एक, क्या बात करता है, उसने कहा अरे क्या दम है इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई, ये प्रैक्टिस की बात है, कोई भी कर लेगा प्रैक्टिस से। अच्छा कोई भी कर लेगा, ये ले तू करके दिखा, तू चला इसको। बोले मैं तो नहीं चला सकता, प्रैक्टिस की बात है तो मैं तो नहीं कर सकता, ये काम तो नहीं कर सकता मैं तो फिर दूसरे की आलोचना क्यों करता है तू नहीं कर सकता तो? कि मैं जो कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो। बोले क्या कर सकता है? नहीं, उसने उठाई एक बोतल पानी की, बिस्लेरी की बोतल, खाली थी, और दूसरी तरफ से उठाया एक उसने बाल्टी पानी से भरी हुई, और पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाकर ये उस बोतल में डालने की, खाली थी बोतल, उसमें डाला और एक बूंद भी नहीं गिरी क्या, और सीधी धार उसके अंदर पानी के इतने से बोतल के मुंह में, और बोतल भर गई पूरी। बोले तू कर सकता है कि एक बूंद भी बाहर नहीं गिरे? बोले ये तो मैं नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? समझ में आई कुछ बात? क्या समझ में आई प्रैक्टिस की बातें? तो समझ में आ रही है बात, आप कौन से काम को कितनी सफलता से कर पाते हैं, इट डिपेंड्स आप प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं। आप जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उस चीज को उतनी गहराई से हासिल कर पाएंगे। यदि आप आत्मा के अनुभव की प्रैक्टिस करेंगे तो तीन काल में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आत्मा का अनुभव करने से रोक सके। प्रैक्टिस आत्मा के अनुभव की चाहिए। आपकी प्रैक्टिस बिजनेस की है तो आप बिजनेस में सफल हैं, आपकी प्रैक्टिस रोटी बनाने की है तो आप रोटी बनाने में सफल हैं, आपकी प्रैक्टिस गाड़ी चलाने में है तो आप गाड़ी चलाने में सफल हैं, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस आत्मा के अनुभव के लिए है तो आप अनुभूति में सफल हैं। क्या करना है बोलो? आत्मानुभव में सफल होना है कि नहीं होना है? वेद विज्ञान के कार्य में सफल होना है कि नहीं होना है? किताब हमने बहुत कोशिश की लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, हो जाएगी अनुभूति। ज्ञानी लोग कैसे कर लेते हैं बोलो? प्रैक्टिस, कुछ नहीं। वर्तमान युग में ऐसे एग्जांपल पढ़ते हैं अपन लोग महेंद्र भाई
जी।
एक व्यक्ति ने उपदेश दिया, मुनिराज ने उपदेश दिया, और सामने पशु बैठे हैं क्या, और मुनिराज का उपदेश सुनकर के शेर को सम्यक दर्शन हो गया, हाथी को सम्यक दर्शन हो गया, मेंढक को सम्यक दर्शन हो गया। ये क्या किया इन्होंने यार, ये क्या कर लिया? ये उपदेश को सुना और उपदेश को सुनकर के सम्यक दर्शन हो गया, और हम बर्फों से सुन रहे हैं और हमें नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है? कि उन्होंने सुनने के बाद अपनी बुद्धि नहीं लगाई, सिर्फ प्रैक्टिस करी।
ठीक है,
और हमने सुनने के बाद में अपनी बुद्धि लगाई कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता तो यू कांट, बस तुम नहीं कर सकते। बुद्धि मत लगाओ, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, ये होमवर्क है हर काम में, ये वेद विज्ञान का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। करने वाला कि जानने वाला, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है? मैं चेतन तत्व हूं कि जड़ हूं? मैं जड़ हूं या चेतन हूं? चेतन अचेतन का काम कर सकता है, अचेतन चेतन का काम कर सकता है क्या? जब दोनों भिन्न भिन्न है तो मैं क्यों कर्तृत्व का वजन अपने माथे पर रखता हूं? मैं क्यों टेंशन में आ गया हूँ? मैं क्यों घबरा रहा हूँ? मैं क्यों आकुलित हो रहा हूँ? देखना अपने हृदय पर हाथ रख करके, जिस घटना से जिस परिस्थिति से आकुलित हो रहे हैं वे जड़ की थी या चेतन की थी?
सही
है। आप वेद विज्ञान करो, आप इस वेद विज्ञान का अभ्यास करो। यदि आप इस वेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर करेंगे तो निश्चित बात है वेद विज्ञान आपके हाथ लगेगा। अनुभव की प्रैक्टिस करो। हिसाब अनुभव की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? आंख बंद करके बैठो, त्रिकाली ध्रुव गया है, भगवान आत्मा का चिंतन करो, मन में चिंतन इतना चलाओ, इतना चिंतन चले कि मन पावे विश्राम की पोजीशन बन जाए। चले तो सही, मन थकेगा नहीं तो विश्राम नहीं करेगा।
सही है,
नींद नहीं आ रही है महेंद्र भाई कि क्यों नहीं आ रही है? तो फ्रेश है, तो थका ही नहीं है। थोड़ा बहुत थकेगा, परिश्रम करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा तो नींद आएगी तेरे को। हम कह रहे हैं मन कब थकेगा, मन पावे विश्राम की परिस्थिति कब बनेगी? जब तू त्रिकाली ध्रुव गया भगवान आत्मा के चिंतन से, विचार से, अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, गुणों का गोडाउन हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, कोई व्यक्ति मुझे मारने में समर्थ नहीं है, और ये त्रिकाली ध्रुव गया तत्व हूँ मैं तो, बना बनाया भगवान हूँ मैं तो, स्वयं प्रभु हूँ, स्वयं परमात्मा हूँ, पर्याय मात्र से पार हूँ, प्रत्येक पर्याय से भिन्न एकमात्र ज्ञायक तत्व हूँ, शरीर से भिन्न देह में रहता हूँ लेकिन देह को छूता नहीं हूँ, देह छता जैनी दशा कैसे वर्तती है बतलाओ, वर्ते देहाती क्यों वर्तती है ज्ञानियों की ऐसी दशा? प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आपको ये उपलब्धि होगी। इस उपलब्धि के लिए ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है क्या, क्योंकि इसके लिए अलग से समय की जरूरत ही नहीं होती
है।
जब कभी हम तत्व ज्ञान और तत्व अभ्यास के लिए लोगों को कहते हैं तो लोग कहते हैं पंडित जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास में, क्या करें टाइम नहीं है। तो मैं कहता हूं इसके लिए टाइम चाहिए ही नहीं है, आप जहां बैठे हैं वहां यह अभ्यास हो सकता है। हम सभी लोग ऐसे अभ्यास पूर्वक सम्यक दर्शन आत्मानुभूति की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से बात गुजरा हूं।